आगे फरमाया वह इसा औरत ना नुखली का करियत अमरना मुतरफी हा।
और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा करते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वो इस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो इन पर अजाब की बात साबित हो जाती है, फिर हम इसे तबाहो बर्बाद कर देते हैं। हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सी कौमें हलाक की, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार और खूब देखने भालने वाला है। ये थी आयत नंबर 16 से 17, 16 to 17। इनका उनवान है बड़ों का बिगाड़ पूरी कौम के बिगाड़ का जरिया। यहाँ अल्लाह तआला ने मुत्रफीन की बात की। मुत्रफीन कौन होते हैं? तरफा से है ये लफ्ज़ इतराफ़, यानी दौलतमंद, इन लीड्स, इन्फ्लुएंशियल टाइप लोग। दो तरह से इंसान बड़ा बनता है, एक माल के जोर पे और एक इक्तदार के जोर पे। जिनको माल मिलता है वो भी दूसरों के दिलों पे छा जाते हैं, और जिनको इक्तदार मिलता है वो दोनों। यहाँ एक बहुत बुनियादी चीज बता दी कि जब किसी कौम के बड़े बड़े से मुराद वही दोनों बड़े जहन में रखिएगा, दौलत वाले और हुक्मरान, या जिनको अल्लाह तआला ने बड़े बड़े ओहदे दिए, जब ये बिगड़ते हैं ना तो पूरी कौम बिगड़ जाती। क्यों? इसलिए देखिए कि जो अवाम होती है ना वो कल अनाम होती है। जैसे जानवर चलते जाते हैं ना अपने चरवाहे के पीछे पीछे, नक्शे कदम पे चलने वाले। अवाम जो होते हैं ना, आमतुन्नास जो होते हैं, वो सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं। जो कोई फैशन निकालेगा वो उस पर तैयार है। उनको ये परवाह नहीं कि हम लग क्या रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमें सूट भी कर रहा है नहीं। वो कहते हैं क्या करें, अब ये फैशन डिजाइनर्स ने ये डिजाइन निकाल दिया, आजकल फैशन है। जो ट्रेंड बन जाता है लोग उसी ट्रेंड पे चलने लगते हैं। जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं ना वो किसी मुआशरे के लिए एक क्रीम होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे हर नबी के दौर में जो मुखालिफ बन के सामने आए वो मुतरफ थे। क्यों? इसकी वजह बहुत सिंपल है। जिनके पास दुनिया की कोई इतनी रंगा रौनक नहीं, चकाचौन नहीं, उनके पास तो कुर्बानी करने को कुछ होता ही नहीं। वो कहते हैं यहाँ वैसे ही नहीं मिला हुआ, चलो मान लेते हैं नबी की बात शायद मिल जाए। और जिनको यहाँ मिला होता है उनको वो छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरी बात है, उस मिलने को वो अल्लाह की रजा और अल्लाह की तरफ से एक ताईद समझते हैं कि लो देखो, अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो क्या अल्लाह ताला हमें यहाँ दुनिया में देता? तो लिहाजा ये डबल गलत फहमी जो इनको होती है ना, इसकी बुनियाद पर फिर ये मजीद बिगड़ते हैं। याद रखिये, ना दौलत अपने नाम से बुरी है और ना इकतदार अपने नाम से बुरा है, लेकिन दौलत और इकतदार के साथ जो बीमारी आम है आने की, जो जर्म्स इसके साथ आते हैं, वो क्या कि इंसान सरकश होने लगता है। फ़फ़सकू फ़ीहा, अपने आप को बड़ा समझेंगे ना। देखिए आप खुद समझे, अपनी जात पे इन चीजों को लेके देखा करें, आपको बिल्कुल सच लगेंगी। हमें जरा मौका मिल जाए ना कहीं जरा बड़ा बनने का, तो हम देखें रोब डालना शुरू हो जाएंगे। आज आपको कोई कह देना कि आप जो कहेंगे आपकी मानी जाएगी, फिर आप कहते हैं अब देखना आप कहा कैसे था, आप दिखाती हूँ बड़ा बन के। आप जिसको एक दफा बड़ा बनाना चाहते हैं ना, वो फिर आपको बार बार बड़ा बन के दिखाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात की। इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता भी है, और वो क्या है कि जब कभी किसी जगह आपने दीन को प्रमोट कराना है, दीन का ट्रेंड लाना है, तो आप वहां के इन लीड्स पे मेहनत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम किया था, दूसरों ने भी यही किया। एक मौके पर ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी ने ये चाहा कि ये कुरैश के बड़े बड़े सरदार है, यहाँ से ही तो सारे मैसेज जाते हैं, यही तो लोगों को ट्रेंड्स देते हैं, अगर ये दीन पे आ जाते हैं तो चले कोई बात नहीं है, मैं इन पे फोकस कर लेता हूँ। और उनके मुतालबे क्या थे कि इन गरीबों को हटाओ। ये एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है दिमागों के अंदर कि जहाँ आम छोटे लोग बैठे हैं वहां बड़े क्यों बैठे। जहाँ मतलब देखिए कैसे बड़े कायदीन अगर खाना काबा में भी पहुंच जाते हैं तो उनको अलग प्रोटोकॉल चाहिए होता है। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अय्याज वाली बात हो जाए। तो लिहाजा ऐसे लोगों को अगर दीन की बात मिल जाती है ना, तो वो लोग जो है फिर आगे जाते हैं। आज के दौर के एक और बड़े भी हैं, और वो कौन है? मीडिया।
आज का सबसे बड़ा मला जो है ना, मुतरफ जो है वो मीडिया है। क्यों? ट्रेंड सेट्स कहाँ से होते हैं? सबसे ज्यादा मैसेज जल्दी कन्वे कहाँ होता है? मीडिया से होता है। आज के दौर में अगर हम चाहते हैं ना कि दीन इस्लाम फैले, तो हमें मीडिया को पकड़ना पड़ेगा। वो मीडिया जो बुराइयों के इश्तेहार बना होता है, और जहां से लोग शैतान के मैसेजेस को कन्वे करवाते हैं और उसको आगे कराते हैं, वहां से अगर आप अल्लाह के दीन को फैलाएंगे ना, आप देखेंगे दीन जल्दी फैलेगा। वही बात जो पीछे भी हो चुकी एक दो बार, कि हर एक की एक हद होती है ना, इस माइक की हद सिर्फ इस बिल्डिंग तक है। इसी तरह जब आप इस पैगाम को किसी ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि जहां से ये बात सब लोगों तक जाए जो आम और खास हैं, तो वहां बात जाएगी। कभी भी कोई नया प्रोग्राम होता है तो लोग कहते हैं हमने बहुत फ्लायर बांटे हैं, मस्जिदों में बांटे हैं, फलां मस्जिद में बांटे, फलां जगह बांटे, फलां जगह बांटे। तो मैं कहती हूँ यहाँ तो वही आते हैं जो चंद लोग हैं, क्या शहर का हर इंसान मस्जिद में आता है? आज भी देखिए बाजारों में जो आने वाले हैं उन पे मस्जिदों की राहें बंद है। आप उनको जाइए, उनको फोकस कीजिए जो बेचारे आते नहीं मस्जिद में, तो बेचारे पहले ही नेक है। ये तो ऐसे जैसे सेहतमंदों को आप नुस्खे बांटना शुरू हो जाए दवाइयों के। आपका काम क्या है? वहां जाएं जो लोग मस्जिदों में नहीं आते, आप वहां दीन का काम शुरू करवाएं, वहां जाके कोई दर्स अरेंज कराएं जहां बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, जो बेचारों ने अभी दीन सीखा नहीं, दीन चखा नहीं। पब्लिक प्लेसेस कोई ऐसे काम, बाज लोग कहते हैं वो कहाँ आएंगे। मैं कहती हूं आपको कैसे इजाजत हुई इस बात की कि आप कह देंगे वो नहीं आएंगे? अल्लाह जब किसी को लाना चाहता है, सिर्फ एक बंदा दीन की तरफ आता है और आप देखिए कि इस्लाम इतना फैल जाता है। उम्र फारूक आए थे तो इस्लाम को कितनी ताकत मिली, और आप पढ़ के देखिए जरा इनके दीन इस्लाम से पहले के हालात, तो आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्सियत देखेंगे।
گے. تو لہٰذا یہاں بات ہمارے لیے کم از کم عمل کی یہ ہے کہ اگر ہم مترفین میں سے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ان کو ٹرینڈ سیٹر سمجھنے کی بجائے دین اور دین والوں کے ٹرینڈز کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر اللہ نے ہمیں مترفین سے بنایا ہے تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے تو ایک بڑی خوبصورت مثال سورت کہف میں آنے والی ہے. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. پھر آگے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء, جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دیتے ہیں, بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا. ومن اراد الاخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن, اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو, بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی. کلن نمد ہا الائی وہ الائی من عطاء ربک, ہم ہر ایک کو بہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے, تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں. انظر کیف فضلنا, دیکھ لے کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے. یہ تھی آیت نمبر 18 سے 21. اس کا عنوان لکھیے دنیا نقد, آخرت ادھار. دوسرا ٹاپک بھی اس کا ہم لکھیں گے, کامیابی کیا ہے, مواقع اور انتظامات کو استعمال کرنے کا دوسرا نام. اس پہ الحمدللہ درس ریکارڈ ہو چکا ہے, مومن جنت کا درخت. اس کو ہم نے بڑی ڈیپتھ میں جا کے ایک گھنٹے کا ایک درس تھا اس میں دیکھا تھا کہ یہ عاجلہ اور آخرہ کیا ہے. لیکن یقین کریں کہ ایمان والے کی زندگی کے اندر یہ دو لفظ بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک وہ چیز ہے جو آپ کو فوراً اپنی کوششوں کے بعد ملنے لگتی ہے, اور ایک وہ ہے جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. دنیا کے لیے کام کرنے والے کو فوراً اس کا بدلہ ملتا ہے. آپ پیسے لگاتے ہیں, چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. آپ وقت لگاتے ہیں, آپ کو اس کا اثر دکھنے لگتا ہے. آپ سکلز لگاتے ہیں, اس کا اثر دکھتا ہے. اس کے برعکس جب آخرت کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اور انتظار کرنا انسان کو سب سے برا لگتا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں مصلحت پرستی کے طریقے اختیار کرتے ہیں نا, تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں عزت ملے, ادھر ہی مال ملے, دولت سب کچھ ملے. اس کے لیے ان کو کچھ بھی قربانی کرنی پڑے وہ کرنے کو تیار ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجلت پسند, جلد باز قسم کے لوگ کہتا ہے. کچا پھل توڑیں گے تو کھٹا ہوگا, کچی ہنڈیا کھولیں گے تو وہ بالکل خراب ہوگی, کچی روٹی آپ کا پیٹ جلائے گی. اس طرح وہ لوگ جو صرف اس دنیا کو پانے کے لیے فوراً سے فوراً کام کرنے لگتے ہیں, اپنی ہر خواہش کو یہاں پوری کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی پرستش کی بجائے خواہش پرست ہونے لگتے ہیں, ایسے لوگوں کو یہاں تو جو ملنا ہے کیا ملے گا, لیکن آخرت میں وہ بہت مشکل میں ہوں گے. آپ ان آیتوں کو ہائی لائٹ کیجئے, یہاں ایک تقابل ہے. پہلی چیز دیکھیے کہ دنیا چاہنے والے کو دنیا ملتی ہے کتنی جتنی اللہ چاہتا ہے. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھکاری آتا ہے نا بھیک مانگنے, تو آپ اس کو دیتے ہیں مگر وہ دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, جتنا آپ چاہتے ہیں, جب آپ چاہتے ہیں. وہ جو مرضی مانگے, وہ کہے مجھے یہ سونے کی چوڑی دے دو, آپ وہ نہیں دیتے, آپ اس کو 54 دے دیتے ہیں. دنیا چاہنے والے کی بھی یہی مثال ہے. وہ اللہ سے جو مرضی مانگتا رہے, جتنا مانگتا رہے, لیکن اللہ اس کو اتنا ہی دے گا جتنا اس نے چاہا ہوا ہے. وہ تھوڑے کو بھی دے کے اس کو مطمئن کر دے گا, کیونکہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کو دنیا کا تھوڑا بھی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے, اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو آخرت کا زیادہ بھی اس کو تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا پانے والا جو ہے وہ صرف دنیا کو لینے لگتا ہے, اور آخرت کو پانے والا کیا ہے کہ جو آخرت کو لیتا ہے. ہم نے جو مثال کل ڈسکس کی تھی کہ ایک بیچ ہے, آپ اس بیچ کو کسی زرخیز زمین کے اندر ڈالتے ہیں, کچھ دن کے بعد وہاں سے کومپل پھوٹے گی, کومپل سے پھر پودا نکلے گا, پودا بعد میں درخت میں بدلے گا, پھر پتے لگیں گے اور آخر میں اس میں پھل آنے لگے گا. اسی بیچ کو اگر آپ کسی پتھریلی زمین پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ بیچ بھی ضائع ہو جائے گا, گھن لگ جائے گا, کیونکہ اس کے اندر فرٹیلائزنگ کی کوالٹی نہیں ہے. یہی حال ہے اس انسان کا جو اپنے آپ کو دنیا میں لگاتا ہے, وہ ایسے جیسے ایک پتھریلی زمین میں اپنا بیچ ڈال رہا ہے. اور جو بندہ آخرت کی زمین کے اوپر اپنے آپ کو لگانا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ پھر وہ ایک ایسے درخت کی صورت میں ابھرے گا کہ درخت لگے گا اس دنیا میں, لیکن اس کا پھل آخرت میں کھائیں گے. بڑی خوبصورت آیات ہیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے درخت لگانے والا بنا دے, کہ ہم وہاں جا کے حاصل کریں اپنی نیکیوں کو, اور وہاں اس کے اجر ملیں گے. چھوٹی سی مثال ذہن میں اللہ نے ڈال دی. مثال ہے کہ آپ کے پاس بہت مال تھا, اللہ نے بہت دین دی تھی اور دل بھی بڑا دیا تھا, آپ اس کو بھی ادھار دے دیتے ہیں, اس کو بھی دیتے ہیں, اس کو بھی دیتے ہیں, اور یاد بھی نہیں رکھتے کہ دیا دیا, جس نے واپس کرنا ہوگا خود ہی کر دے گا. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا کر دے. اب آپ دیکھیے کہ بل فرض کوئی دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا, جب اس کا دل آتا ہے وہ دے دیتا ہے. اسی دوران آپ کسی ایک اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں, حالات کے آپ کا مال ختم ہو گیا. اب آپ سوچیں کہ ایسے وقت میں جب آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے یا بینک کرپٹ ہو گئے, اور اس وقت پھر آپ کے پاس کوئی شخص آئے, اس کا فون آئے اور وہ کہے کہ میں نے آپ کا فلاں وقت مال آپ سے लिया था, मैं आपको अदा करना चाहता हूँ। आप सोचिए कि वो चाहे चंद लाख हो, आपको उस वक्त वो चंद लाख कितनी बड़ी गनीमत लगेंगे। हो सकता है जब आपके पास वो माल था आप उसको कहें केयर नहीं, डोंट वरी टेक इट, आई डोंट वांट इट, लेकिन जब आप मुश्किल में आते हैं तो आपको चंद हज़ार भी बड़े लगते हैं, लाखों की बात दूर की है। यही हर एक के साथ होने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुब बका सियात नारियात, बहुत सारे दुनिया में कपड़े पहनने वाले कल क़यामत के दिन बरहना होंगे, नेकेड होंगे। आज शोहरों वाली हैं, कल वहाँ बेशोहरों वालियाँ होंगी। आज बहुत दुनिया के ऊपर हम अपना रोब डाले में, कल हम बेरोब होंगे। ऐसे वक्त में बंदे की वो नेकियाँ जो उसने छुपा के की होंगी और अल्लाह की रजा के लिए की होंगी, और वो माल जो अल्लाह के रास्ते में लगाएगा, फरिश्ते उठा उठा के देंगे कि ये बंदे तू ये ले ले। ऐसा एक वाक्य याद आ गया, आगे कहीं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगी, कि बंदा जब क़यामत के मैदान में बाज़ दफ़ा इतना भी ज़्यादा मजबूर किया जाएगा कि सिर्फ एक नेकी की कमी उसको जहन्नुम में डाल देगी, और फरिश्तों को हुक्म हो जाएगा कि इसको जहन्नुम में डाल दो क्योंकि इसके बस नेकी कम है, तो वो उस वक्त ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह ताला मुझे मौका दिया जाए कि मैं एक नेकी अगर ले आऊँ, किसी से भी ले आऊँ, इतने रिश्तेदार दिख रहे हैं, इतने दोस्त हैं, साथी हैं, सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत करता रहा, तो मुझे फिर आप जन्नत में जाने देंगे। कहा जाएगा हाँ ले आओ जाओ। अब वो जाएगा माँ के पास, बाप के पास, सबके पास कि एक नेकी दे दो, ढेर पड़े हैं। अब उसका तो ख्याल होगा कि वो सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो कहेंगे चले जाओ, तुम्हारी वजह से तो आज हम परेशान हैं, तुम्हें तो हम नहीं रोकते थे, नहीं टोकते थे, और बिलआखिर इंसान शर्मसार होकर अपने नामे अमाल के पास आएगा। अब उसको यकीन होगा कि मेरे लिए तो बस जहन्नुम है, कि फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे कि जाओ, मैंने जो इसके लिए छुपा के रखा था लेके आओ। उस वक्त फरिश्ते फिर एक छोटा सा मोती लेके आएंगे, एक डिबिया के अंदर चमकता हुआ, और कहा जाएगा इसको अपने पलड़े में रखो। वो कहेगा ये इतना सा मोती इतने बड़े पलड़ों में क्या करेगा, आज सबने धुतकार दिया, शायद इस वक्त मेरे साथ ये कोई मजाक हो रहा है। कहा जाएगा नहीं, तुम इस पलड़े में रख के तो देखो। और उस एक छोटे से मोती का नेकियों के पलड़े में रखना उस पलड़े को इतना भारी कर देगा कि वो झुक जाएगा और अल्लाह ताला कहेंगे जाओ जन्नत में चले जाओ। उस वक्त बंदा पूछेगा अल्लाह ताला ये क्या किया, ये कहाँ से आया, आज तो आपने बड़ा एहसान कर दिया। कहा जाएगा ये एहसान नहीं है, ये तेरी नेकी थी। अल्लाह ये कौन सी नेकी थी। फिर याद कराएगा अल्लाह याद कर, रात का वक्त था, सर्दी थी, सब सो रहे थे, तू भी सो रहा था, फिर मेरे खौफ से तेरी आंख खुल गई, फिर तू बिस्तर से उठा, तूने वजू किया और तू जाए नमाज पे, और मेरे खौफ से तेरी आंख से एक आंसू टपका था। अल्लाह याद है का, ये वही आंसू मैंने मोती का बना के छुपा दिया था। फौलाइका काना सायुहुम मशकूरा, ये कदरदान रब है। बाज़ रिवायतों में आता है कि गट्ठड़ दिए जाएंगे और वो कहेगा ये क्या है, तो कहा जाएगा ये तेरी वो दुआएं हैं जो तेरी दुनिया में कबूल नहीं होती थी, मैंने संभाल लिया था, अल्लाह चाहे तो उन दुआओं के बदले दुनिया का राज दे देता, लेकिन अल्लाह को पता है कि उसके बंदे के ऊपर दुनिया में कितने मुश्किल लम्हे आने वाले हैं, और अल्लाह से बड़ा कोई कदरदान नहीं है वल्लाही। अगर आपने नौकरी करनी है ना तो अल्लाह की कीजिए, जॉब करनी है तो अल्लाह की कीजिए, अगर बिजनेस करना है तो अल्लाह के साथ कीजिए, अगर पार्टनरशिप करनी है तो अल्लाह के साथ करें, अगर अपनी ज़िंदगी देनी है तो अल्लाह के रास्ते में दें, अपनी जवानी, अपना माल, अपनी स्किल्स देनी है अल्लाह के रास्ते में दें, इसलिए कि वकान असायुहुम मशकूरा, वो कभी किसी को मायूस नहीं करता। कि हज़रत नूह के रास्ते में 950 साल लगाएं तो उनको तो फ़ायदा हो, और अगर आज के दौर में कोई लगाए चाहे 9 साल तो अल्लाह उसके ज़ाया करे। अल्लाह परसेंटेज, 0.00 सेकेंड्स का भी हिसाब देगा, एक एक करवट का अल्लाह आपको हिसाब देगा। आप यहाँ बैठते ना, आपकी तकलीफ होती है, आपकी कमर में दर्द होती है, अगर आपको लिखने में मुश्किल होती है, आपको फोकस करने में मुश्किल होती है, आपको टॉपिक याद रखने में मुश्किल लगती है, उस रब का वादा है कि कहना सा यूं मशकूरा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी कदरदानियां करेगा, आपको खुश कर देगा उस दिन के तुम उस वक्त परेशान होते थे ना मेरे रास्ते में, तुम्हें मुश्किल लगता था ना, आओ मैं आज तुम्हें उसका अजर दूं, सिर्फ इस दुनिया में काम करने की देर है। लेकिन शैतान ने हमें यही बहका दिया, उसने कहा कि वो तो तुम्हारी कदर ही नहीं करेगा, वहां जाओगे तो जाया हो जाओगे, और मेरी बातें मानो, मैं देखो तुम्हारी कदर करता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें उसके रास्ते में बेहतरीन काम करने वाला बना दे, और इस छोटे से खाकी वजूद को अल्लाह ताला कबूल करके जन्नतों का वारिस बना दे। वरना याद रखिए कि किसी के पास कुछ भी नहीं कि जिससे वो जन्नत पा सके। ला तजल माल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहराओ कि आखिर तुम बुरे हालों में बेकस होकर बैठे रहोगे, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना, अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो इनके आगे उफ तक ना कहना, ना इन्हें डांट डिपट करना, बल्कि इनके साथ अदब और एहतराम के साथ बात करना। वख़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और आजी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ु का बाजू पस्त रखे रखना, और दुआ करते रहना कि रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे परवरदिगार, इन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है, अगर तुम नेक हो तो वो रुजू करने वालों को बख्शने वाला है। ये थी आयत नंबर 22 से 25, 22 से 25। इनका उनवान है इख्तियार में इम्तिहान है, चॉइस में टेस्ट है। यहाँ से लेके आगे चंद आयात तक अहकामाते अशरा हैं, 10 हुक्म जिनको 10 कमैंडमेंट के नाम पे तौरात में जानते हैं। ये कुरान पाक का रिवाइव्ड एडिशन है। अल्लाह ताला ने ये पीछे भी तस्करा हम सुन चुके कि इन अहकामात का हुक्म पीछे भी दिया आगे भी दिया। और आप पूरी सूरह बनी इसराइल, इसके नाम से ही आप देख लीजिए कि सूरत का नाम ही बनी इसराइल है। बनी इसराइल के साथ मुसलमान उम्मत का तकाबुल है। ये सूरत के आगाज में सुभान अल्लाजी का आना और उसके बाद सारी बनी इसराइल की बातें और इनका आना, ये हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला बताते हैं कि जब कोई कौम अल्लाह ताला की रहनुमाई से फ़ायदा उठाती है तो उसको अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देते हैं। अगर कोई किसी को दीन का एक खुलासा देना चाहे तो ये बेहतरीन आयते हैं। और पहली चीज़ इसमें आप देख रहे हैं, आप नोट कर लें हाईलाइट करके, कि ला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर, ये पहला हुक्म है इनमें। आखिरी भी देखेंगे तो आप इन दोनों को इंशाल्लाह रिलेट करेंगे। तौहीद, अल्लाह को एक मानना, सब कुछ उसका है, वही राजिक वही मालिक वही सब कुछ करने वाला है, गैब के पर्दों में, लेकिन अल्लाह ताला खुद सामने नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को इतनी निशानियां दिखा के ये साबित कराता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने हम सबको इख्तियार दिया है, उसको माने या उसके साथ औरों को माने, उसको ना माने और औरों को माने या सिर्फ उसको माने, लेकिन इस इख्तियार में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये चॉइस पहाड़ों को नहीं मिली, फरिश्तों को नहीं मिली, सितारों को नहीं मिली, सूरज और चांद को नहीं मिली, वो सब के सब अल्लाह को मानने पर मजबूर है, लेकिन इंसान को चॉइस दी और यही इंसान का इम्तिहान है। ये अल्लाह की रहमत है कि वो अपनी रहमत से इस इम्तिहान को इंसानों के लिए आसान कर दे और वो एक रब के साथ जुड़ा रहे। ऐसा ही रब जो बंदों के इन मामलात को करने वाला है, इसके अंदर चूंकि अल्लाह ताला खुद छुपा हुआ है और वो बंदे को कहता है कि तुम मेरा हक अदा करो, इसी तरह का मामला इंसानों में से बूढ़े माँ बाप का मामला है, बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं ना, उनका औलाद के ऊपर कोई मादी जोर नहीं रहता, और जो औलाद अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करती है ना, तो वो अपने आजादाना जहनी फैसले के तहत ऐसा करती है, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई कानून ये नहीं कह सकता कि बूढ़े लोगों के साथ कैसे रहो। बूढ़े माँ बाप जिन्होंने तुमको पाला, जिन्होंने तुमको पोसा, कल तुम छोटे थे, तुम बिल्कुल बेबस थे, आज वो बूढ़े बेबस हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम उनको उफ ना कहो। हजरत अली कहते हैं कि अगर उफ से भी कोई छोटा कलमा होता तो अल्लाह ताला वो भी माँ बाप के आगे बोलने से मना कर देता। अब देखिए, उफ कहते हैं ना तो मुंह से हवा निकलती है, और फूंक निकलती है ना तो उससे चिराग गुल हो जाता है। उफ कहने से बूढ़े माँ बाप के दिल के चिराग भी बुझने लगते हैं, जिन्होंने एक एक पत्ते को सींच के एक दरख्त बनाया हो, फिर जब वो पत्ते ही उनको वही दरख्त उनको साया देने से दूर हो जाएं तो बूढ़े माँ बाप का दिल दुखने लगता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बच्चों को माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन कई बच्चे मिल के माँ बाप को नहीं पाल पाते। बाज दफा माँ बाप को तरबियत करने लगते हैं, बूढ़े माँ बाप की तरबियत नहीं हो सकती। हाँ, उनके साथ सब्र करना पड़ेगा। अगर वो बुरी बात कहते भी हैं तो फिर ला तनहर हुमा, उनको झिड़को नहीं। मुझे ये बात पहले कभी समझ नहीं आती थी कि कभी कोई माँ बाप को भी झिड़कता है, अब समझ आने लगी बच्चों के माँ बाप से बात करने के स्टाइल को देख के। ऐसे लगता है बादल गरज रहे हैं, दोस्तों से साथियों से तो ऐसे लगता है जैसे ओस बरस रही है, और माँ बाप के सामने आते हैं तो ऐसे लगता है कि शायद इनसे बड़ा हमारा कोई मुजरिम नहीं। जब औलादें इतनी खुदसर होने लगें कि कहें कि क्यों पैदा किया था हमको, ये आपका फैसला था, ये आपकी लज्जत थी, हमने आपको मजबूर नहीं किया, आप बताइए इससे ज्यादा उनके दिल कैसे टूटते न होंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा उनको हक दो, बल्कि एहसाना, हक से ज्यादा दो। माँ बाप के साथ एहसान के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त हम सामने अगर रखें, उनको वक्त दो, उनको तवज्जो दो, उनको मोहब्बत दो। हम कहते हैं हमने माँ बाप को पैसे दे दिए और क्या दें, हमने इनके लिए मेड रख दी और क्या करें। तो ठीक है, बचपन में माँ बाप भी बच्चे के लिए मेड रख दें और दैट्स इट। आप कहते हैं हम इतने पैसे तो इनको देते हैं, तो आपके माँ बाप भी बचपन में अगर आपको नोटों की गड्डियाँ दे देते और आपको माँ दूध ना पिलाती तो क्या मिलता। आप सोचिए एक एक चीज़। आज अगर बच्चे माँ बाप कोल्ड होम्स में डाल के मुतमईन है कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, तो क्या वो इस चीज़ की दलील नहीं दे रहे कि उनके माँ बाप ने ये बहुत बड़ी गलती की कि कल हमें भी उन्होंने क्यों बेबी सिटर्स के हाथों में नहीं डाल दिया और खुद ऐश करते मस्ती करते। देखिए जितनी तेज़ी से हम खुदा से दूर हो रहे हैं ना, खुदा फरामोशी की ज़िंदगी है, उतनी ज़्यादा माँ बाप फरामोशी है। और अफसोस की बात है और मुजरिम है वो माँ बाप जो पहले अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं करते, और जब बच्चे बिगड़ते हैं और उनको पकड़ के किसी मस्जिद या दर्स में लाते हैं और कहते हैं इसको माँ बाप के हकूक पे दर्स दो। मुझे जब भी कोई कहता है मुझे तो सर से पांव तक आग लग जाती है। मैं कहती हूँ हम अपने बच्चों को दीन भी वही देना चाहते हैं जो हमारे हक के मुतल्लिक हो, इससे ज्यादा उनकी नजरों में खुद गर्ज कौन कहलाएगा। आप अपने बच्चों को रब से जोड़िए, देखिए फिर वो आपसे जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते। इसकी मिसालें बेशुमार आपकी जिंदगी में भी होंगी और तारीख में भी होंगी। یہاں اللہ کے ساتھ ماں باپ کی بات آ جانا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب بندہ رب کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال آنے لگتا ہے، اور جب اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر وہ ماں باپ کی بھی بات نہیں پسند کرتا۔ آج کے دور کے تحفے کیا ہیں کہ سال میں ایک دن مدر ڈے منا لو اور سال کا ایک دوسرا دن فادر ڈے منا لو، اور اس گلٹی کانشیس کو ختم کر دو جو تمہارے دل میں آتی ہے ان بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر دن مدر ڈے ہے، ہر دن فادر ڈے ہے، سارا سال تو آپ کسی کو پوچھیں نہ اور ایک دن جا کے شکل دکھا کے آ جائیں، کیا وہ بیوی خوش ہوگی اپنے شوہر سے؟ ہم میں سے کوئی اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ ہم نے آج کیا تحفے دیے انسانیت کو؟ آگے بھی انشاءاللہ جا کے اس پہ کہیں بات ہوگی، لیکن اس وقت صرف اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کا دل دکھا چکے ہیں نا تو معافی مانگ لیں، یقین کریں یہی ایک قیمت ہے آپ کے جنت میں جانے کی کہ اگر وہ زندہ ہیں تو جا کے معافی مانگ لیں، کنفیس کریے، پچھلی ساری کوتاہیوں پہ معافی مانگے۔ اگر ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اگر ہم واقعی اپنا ریئل ٹیسٹ چاہتے ہیں نا تو آج ہم اس کلاس کے بعد جس طرح بھی ممکن ہو، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، پاس موجود ہیں تو جا کے ان سے اس بات کا اقرار کیجئے کہ ماں اور باپ، شاید میں نے آپ کو دکھایا ہو، شاید میں نے آپ کا دل توڑا ہو، مجھے معاف کر دو۔ یقین کریں آپ کے منہ سے پوری بات بھی نہیں وہ سننے دے گی بوڑھی ماں، وہ بوڑھا باپ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وہ فوراً آپ کو معاف کر دے گا۔ مسئلہ رہ جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے ہیں نہیں، چلے گئے، ان کو دکھا چھوڑ دیا، وہ دنیا سے جل جل کے چلے گئے، اب کیا کیا جائے؟ ایسا ہی سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی اس حال سے چلے گئے کہ میرے سے ناراض تھے، میں کیا کروں؟ کہا تم کثرت سے پڑھو کہ رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا۔ ایسے ماں باپ کے لیے پھر دعا مانگیں، کثرت سے مانگیں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، اپنی نیکیوں کے سفر کو تیز سے تیز کر دیں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ہمارے ماں باپ کے حق میں لگا دے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ نے اس میں تسلی دے دی کہ کوئی بات نہیں، بعض دفعہ اولاد چاہتی ہے ماں باپ کو دیکھنا، ٹھیک کرنا، لیکن طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، کہیں بچے دین پہ ہوتے ہیں، ماں باپ دین سے دور ہوتے ہیں، اب ایسی اولادوں کے لیے کیا بات ہے؟ تو اللہ نے ان کا بھی جواب دے دیا کہ غم نہ کرو، اگر تم خوش ہو، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب کو پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تمہارے دل کے اندر جو بات ہے اگر سچ کی ہے، خیر کی ہے، تم کوشش کرتے ہو لیکن وہ خوش ہوتے ہی نہیں، اور حقیقت ہے کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہو سکتے، تو پھر تم اللہ کے لیے ان کو خوش کرتے رہو، وہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تو ماں باپ کا بھی ہے تو بچوں کا بھی ہے، ہمارا حال ہے کہ جب ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو بچوں کو بالکل لٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، ہر بندے کے دل پہ اللہ کی نظر ہے۔ اب آگے کچھ احکامات ہیں، انہی احکامات کے اندر مزید تذکرہ ہے جو 10 کمینڈمنٹس تھے۔ وآتِ ذی القربٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو، بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھائے، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 26 سے 30، 26-30۔ اس کا عنوان لکھیے، مال ضرورت کے لیے ہے، نمائش کے لیے نہیں۔ دوسرا ٹاپک لکھیں گے، اعتدال بہترین راہ ہے۔ رشتہ داروں کی بات ہوئی یہاں، ماں باپ کے حقوق کے بعد جن کا حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، اور الاقرب من الاقرب کے اصول پہ، قریبی قریب تر سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کے بعد جس کا حق ہے وہ چچا کا ہے، اور ماں کے بعد جس کا حق ہے وہ خالہ کا ہے۔ جس کی ماں چلی گئی یہ دنیا سے، اب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو اپنی خالہ کی خدمت کرے، اس کی مدد کرے۔ باپ دنیا سے چلا گیا تو چچا، تایا، جو بھی بھائی ہوتے ہیں باپ کے، ان کی مدد کی جائے۔ رشتہ داریوں کو ملانا اسلام کے اندر اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم کے ساتھ جوڑ دیا، اور کل قیامت کے دن جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹ کے دنیا میں سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ دیکھیے، تین لفظ اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو مال خرچ کرنے کا بہترین سلیقہ آ سکتا ہے۔ ایک لفظ ہے آسائش، دوسرا ہے آرائش، اور تیسرا ہے نمائش۔ انگلش میں بول دیتی ہوں جو لوگوں کو مشکل ہوتا ہے۔ پہلا میں نے بولا آسائش، اس کا مطلب ہے لگژری، لگژری کی بجائے کمفورٹ کر دیں اس کو۔ دوسرا ہے آرائش، اس کو آپ کہہ لیں ڈیکوریشن، اور تیسرا ہے نمائش، یہ ہے شو آف۔ اسلام کمفورٹ کی بھی اجازت دیتا ہے، आप घर में कंफर्टेबल चेयर्स, कुर्सियां, मेज रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आप कंफर्टेबल कार खरीद सकते हैं अगर आप अफोर्ड करें आपकी जायज कमाई के, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज रह जाती है डेकोरेशन, खूबसूरती, आराइश। इस्लाम इसकी भी इजाजत देता है। जब आपने कपड़े पहन नहीं है तो अगर आप अच्छा प्रिंट खरीद लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। आप मरे मरे रंग लेने के बजाय शोख रंग लेते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। आपको पर्दे लगाने तो थे ही, अगर आप उसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए अगर कुछ खर्च कर लेते हैं कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिस चीज की इजाजत नहीं वो नुमाइश है, शो ऑफ के लिए नहीं कर सकते। आप बड़ा घर, नरम आरामदेह कुर्सियां रखें इसलिए कि लोग देखें, वो क्या घर है, कतन इजाजत नहीं। आप इसलिए खूबसूरत कपड़े पहने के लोग देख के मरते जाएं, आपके कपड़ों को देख के इसकी इजाजत नहीं है। आप अपनी आंखों की खुशी के लिए, आपको अल्लाह ने मिजाज दिया, आप अच्छे रंग के कपड़े पहने, आप कढ़ाई वाले पहन लें, आप सिलाई वाले पहन लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये कब बिगड़ जाते हैं, जब हम दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक दफा देख लिया, दोबारा भी देखना होगा। तो नुमाइश मना है। और जब बंदा इस चीज के ऊपर अमल करता है ना, तो उसकी जिंदगी से जो चीज निकल जाती है ना, वो इसराफ निकल जाता है। आप सच बताइए कि जितने कपड़े इस वक्त हमारी वार्डरोब्स में है, एक औसत दर्जे की खातून, क्या हमें उनकी एग्जैक्ट गिनती पता है कि कितने कपड़े इस वक्त उसके पास मौजूद हैं, उसके वार्डरोब में, उसके सूटकेसेस में, उसके घरों में? अब आप बताइए कि जो चीज आपको पता ही नहीं, काउंटेबल नहीं वो चीज। दूसरी बात आप देखिए कि क्या हम में से हर एक ये कह सकता है कि मेरे पास जितने कपड़े हैं मैंने वो सारे कपड़े एक एक दफा कम से कम पहन लिए? मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ कैसा नहीं है। शादी में जो 100 जोड़े मिलते हैं ना, उसमें से कम से कम आधे जोड़े दुल्हन ने अभी पहने ही नहीं होते, कि फैशन बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, नाप बदल जाता है। अल्लाह मना नहीं करता। देखिए, आप अच्छा खूबसूरत कपड़ा बना सकते हैं, ईद आ रही है ना, आप एक अच्छा सूट बना सकते हैं, लेकिन उस कपड़े को खरीदने के लिए आपकी अगर नमाजें जा रही हैं, आपकी सोच जा रही है, आपके रोजे जा रहे हैं, तो आपको कतन इजाजत नहीं है उस जोड़े को बनाने की। आप एक अच्छा सूट बना लें, मौसम बदलता है आपको मोटे कपड़ों की जरूरत होती है, मौसम बदलता है आपको गर्मियों कपड़ों की जरूरत होती है, आपको ये एक मुनासिब मौका दे के बाजार जाके अपनी पसंद से खरीद लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी मुनासिब तरीके से उनको सिलवा लें, फिर उसके बाद अपने दिल को उस पर राजी कर लें। घर की कोई शादी आती है, कोई भाई के बच्चे की, बहन की, अपने घर की, आप 2-3 जोड़े बना सकते हैं, अच्छे बना ले अपनी हैसियत के। लेकिन अब उन कपड़ों को इसलिए दोबारा ना पहनना कि दूसरे देख चुके हैं, ये ज्यादती होगी। अल्लाह के नबी इस चीज को किन लफ्जों में कहते हैं कि मा आला मन इक्तसित। ये 3 लफ्जों की हदीस है, अगर हम अपनी जिंदगी में डाल लें तो यकीन करें कि हमारे आधे मसले हल हो। के मा आला, कभी भी मुफलिस नहीं होगा मन इक्तसित, जिसने दरमियाना खर्च किया। जो बंदा अपने अच्छे दिनों में कुछ ना कुछ बचा के और जमा करके रखता है ना, वो बुरे दिनों में भी इंशाल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जब हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ें कि वो हमें भगाती फिरे, और पहनना सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए हो, तो ये चीज इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इस्लाम दीन फितरत है। अब ये अगर मेरा दुपट्टा है, अगर मैंने इसको 4 दफा पहन लिया है, 5वीं दफा आज फिर पहन लिया है, तो आप बताएं कि इससे मेरी शान में क्या कमी हुई? हो सकता है आप लोगों ने ये पिछले महीने में मुझे 4-5 दफा देखा हो, क्या मेरी शान में इससे कोई कमी हुई? और अगर मैं हर रोज आपके सामने एक नया सूट पहन के आऊं, आप बताइए क्या मेरी इज्जत में कुछ ज्यादा होगा? आपको आपकी नजरों में हो जाएगा, जो मुझे देख ही नहीं रहे उनकी नजरों में क्या होगा? ये जो झूठे मेयार हमने इज्जत के और शोहरत के कायम किए हुए ना, इसने हमें दीन के कामों से रोका हुआ है। सारा दिन कपड़े समेटते रहते हैं, एक का दुपट्टा नहीं है तो एक का स्कार्फ नहीं है, एक की चादर नहीं है, एक का वो नहीं है, अब वो खराब हो गया, अब इसका रंग बदल गया, अब ये फैशन बदल गया, और यही करते करते जिंदगी गुजर जाती है। एक बा मकसद इंसान देख लीजिए। और एक और छोटी सी बात, जहाँ कपड़ों की बात इसलिए की कि अमूमन हमारा खर्च कपड़ों पर लगता है। जेवर तो इतना महंगा हो गया कि अब वो एक दफा लेके डांट खा के चुप करके बैठे रहते हैं, अगले साल अब फिर खाएंगे डांट, लेकिन कपड़ों पर हमारा खूब जोर चलता है। सच है, कोई शादी पे नया जेवर तो नहीं बनवाने की जिद कर रहा शोहर से, किसी के घर में झगड़ा तो नहीं चल रहा है? तो अब आप देखिए कि जब हमारा ये हाल हो जाता है कि जिसकी बुनियाद पे हम अपने आप को इतना ज्यादा यानी इन चीजों का गुलाम करते हैं ना, तो हमारे पास बामकसद काम का वक्त नहीं रहता। जो बात शेयर करने के लिए थी और दिल में अल्लाह ने भी डाली, हमने चूंकि शहद की मक्खी को पढ़ा है ना कल डिटेल से, तो अब मेरे सेहत में तो हर चीज में वही मिसाल आ रही है। कभी आपने शहद की मक्खी को कपड़े बदलते देखा? ज्वेलर्स की दुकान पे देखा? कभी आपने उसको मेकअप खरीदते देखा? चले, और कौन सी चीजें काम कर रही हैं? पिछले पारे में जिक्र आया था अनाम का, दूध देते हैं भैंसे, आगे आएगा, इसलिए इस पे मैंने ज्यादा कल फोकस नहीं किया था। सूरह मोमिनून में हम पढ़ेंगे इसको। अब देखिए, कभी आपने किसी भैंस को बुटीक पे देखा है? पूरी कायनात काम कर रही है, काम काम काम, और बामकसद लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता। मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ कि मुझे नहीं याद कि मैं कब कितने साल पहले बाजार गई थी, और गई भी होंगी पिछले 1 साल 2 में 2-4 दफा तो वो ग्रोसरी के लिए गई होंगी, और वो भी जब मैं अपने स्टेशन पे होती हूँ, मुझे नहीं याद। और मेरा दिल इतना मुतमईन, और कुछ कम भी नहीं हुआ मेरे पास। बल्कि मेरी जिंदगी और मुतमईन और सुकून वाली। और अभी ये भी चीजें दिलचस्प ना हो जितनी है जो दूसरों की मोहब्बतों की सूरत में हम पे उड़ेल दी जाती है ना, कोई माँ की मोहब्बत, कोई बहन की मोहब्बत, या खाला की मोहब्बत, वो मोहब्बतें ही नहीं हमसे संभलती जो तोहफों की सूरत में हमारे सर पे डाल दी जाती हैं। क्यों? कि मकसद है ना सामने। वरना आप देखिए कि बा मकसद इंसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी सोचती हूँ अल्लाह इसका हिसाब लेगा? चीथड़ा ये क्या, आप प्योर रेशम पहन लें, आप सॉफ्ट से सॉफ्ट, आप 10,000 रुपए का सूट पहने, आप कह रहे हैं ये 10,000 के, अल्लाह कहता है ये चीथड़ा है, ये क्या, मैं इसका हिसाब लूँ? छोड़ो, असल मसला ये कि ये चीजें इंसान की सोच ले लेती हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि आई कैंट अफोर्ड, तो दुनियादार तो कहते हैं ना कि माल में अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बा मकसद इंसान कहता है कि मैं इसकी खिदमत नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म से जब से अपने आप को इन चीजों में रखा है, मैंने स्टार्च वाले कपड़े पहनने छोड़ दिए, मैं इस्त्री वाले कपड़े नहीं पहनती, मैं क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कहाँ इतना वक्त निकालूं कि मैं इसको धोऊं, इसकी पूजा करूं, इसको मैं स्टार्च करूं, फिर मैं 1 घंटा लगा के इसको इस्त्री करूं, फिर पहन के भी देखिए सोच बदलती है। आप एक ढीला ढाला सीधा साधा कपड़ा पहने और आप एक स्टार्च वाला पहने, क्या आपकी सोच में फर्क आता है? नमाज पढ़ के देख ले दोनों कपड़ों में, पूरे वक्त में आप अपनी क्रीज ठीक करते रहेंगे। आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये ढीला हो गया, अब इसको ऐसा करना है वैसा करना है क्यों? और वो चीजें आपकी तवज्जो लेती हैं। आप नया कपड़ा पहनते हैं तो आपका बर्तन भी नहीं धोने को दिल चाहता है, और आप घर के कपड़े पहनते हैं एकदम अब शुरू हो जाते हैं, चलो अब शुरू करते हैं। कभी कभी दिल खुश करने के लिए कर लिया करें, लेकिन इसको अपनी जिंदगी का गोल ना बनाएं, ताकि आप कुछ और काम भी करें। अगर इस वक्त हम एक बड़ी मुश्किल सी कमिटमेंट करें, जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, लेकिन आज हम रमजान में ये बातें कर रहे हैं ना, अगर हम ये कहें कि इस रमजान से अगले रमजान तक मैंने कोई नया कपड़ा नहीं बनाना, क्या हम जी सकेंगे? आपको लगता है? मुझे लगता है हमारे पास जितने कपड़े ना, अगले 10 साल तक अगर हम एक भी ना बनाए, मैं अपने समेत कहूंगी, इवन मैं खुद नहीं बनाती, मेरे पास कुछ नहीं होता, फिर भी मैं कह सकती हूँ कि 1 साल क्या मेरा हाल है, हम सारी ये बगली जिंदगी ना ही सिलवाएं तो भी ठीक है। करना चाहते हैं नियत, अगले दौरे कुरान में फिर इसका टेस्ट होगा, नहीं बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला। अब ये ना करें कि आप अपनी बहन के बनाने लगे और बहन को कहें कि मेरे बना दो। देखिए हर कानून के अंदर कुछ ना कुछ और दरवाजे होते हैं। हाँ देखिए, कभी भी कोई चीज आए ना तो उसके बदले में अपनी कुछ निकाल दें, एक आई तो उसकी जगह दे दे, अपनी अलमारी में एक खास हद तक रखें, इससे आगे नहीं मैंने बढ़ने देना। इंशाल्लाह आपको बड़े घरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा हाल क्या, पहले चीजें भरते हैं, फिर घर छोटे होते हैं, फिर और भरते हैं, वो घर यकीन करें कि स्टोरेज हाउस ही बने हुए हैं। अल्लाह ने बहुत प्यारा कानून इन आयतों में दिया ना, औसत रहो, ना बहुत बुखल करो ना बहुत दो। फिर आप देखिए कि इसमें ये जो लफ्ज गुजरे ना कि अपने हाथों को गर्दन से ना खिंचा रखो, एक बड़ा लामुहाला नतीजा निकलता है कि जब हम बहुत दुनिया पे खर्च करते हैं ना तो दीन पे खर्च करना मुश्किल होता है। आप शऊर से देखें कि एक औरत अपने एक लिबास पे कितना खर्च करती है, $50 से लेके $80 तक बिल्कुल एक औसत दर्जे का सूट लोग लेते हैं। कोई बहुत ही कॉटन टाइप का या सूती लॉन का होगा तो शायद 35 में होता है, ये भी मुझे मेरी दोस्तों ने बताया, मैं फिगर मैंने खुद कभी नहीं लिया वहां से। लेकिन जो अच्छा शादी का फैंसी सूट है, तो एक मेरी दोस्त थी उसका बुटीक था, बहुत शहर की मारूफ थी, तो एक दफा उसने कहा कि मैंने सेल लगाई हर सूट $100 का, तो कह रही लोग इस तरह आए कि मेरे कई के साल के पुराने भी उठा के ले गए कि हाय $100 का सूट मिल रहा है, फैंसी सूट ना, तो मैं कहा $100 का, करी हाँ मेरे पास आम सूट 250-300 से ऊपर होता है, तो लोग इस खुशी में आके ले गए, मेरा सारा साफ हो गया, पिछला क्लियरेंस हो गई क्योंकि $100 का है। अब आप देखिए कि ये चीज जो है इसका नतीजा क्या निकलता है कि हम इतना देने को होते हैं, और इसके बरक्स जब दीन की बात आती है तो फिर दिल कितना खिंचता है। बाज दफा बाज लोग दीन की कोई चीज अपने लिए भी नहीं इस्तेमाल करते, वजह क्या है कि छोड़ो बहुत है घर में और बहुत है उसकी जरूरत नहीं है। तो आज आप देख लीजिए, अल्लाह ताला ही रहम करे, यहाँ तो मुझे लगता है कि फिर भी दीनी इदारे अच्छे हैं, अपने मुल्कों में देखें कि कारपेट भी फटे होते हैं, कोई हमारे घर में जरा सा कारपेट का रंग भी उथड़ जाए तो हम कहते हैं ये अब हमारे स्टैंडर्ड का नहीं रहा, पकड़ो इसको मस्जिद में दे आओ। तो ये फिर मेयार आने लगता है कि उधर से फिर बुखल आता है, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को बिल्कुल अपोजिट वे पे कर दे। एक अब बात हो ही रही है तो एक वाक्य याद आ गया, वो सुनाई दूं, क्योंकि इस वक्त आपकी वो सोच डिवेलप हो रही है ना कि इस्लाम खर्च करने का क्या मेयार देता है, क्योंकि आयतों का मैं इंतजार कर रही थी, इस मौजू पे पहले हमने बात नहीं की इस एंगल में। एक शख्स नबी सल्लम के पास आया, कुछ जरूरत थी उसको, अब अल्लाह के नबी के पास नहीं था, और आपके पास जब नहीं होता था तो आप नेकी को जाया नहीं जाने देते थे बल्कि किसी दूसरे को रेकमेंड कर देते थे। आपने इसको कहा कि इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, तुम वहां चले जाओ, वो उस्मान गनी का घर है, और उनसे जाके सवाल करो, कुछ ना कुछ देंगे। उसने कहा अच्छा, वहां गया, इत्तेफाक देखिए कि जब उनके घर के भी बाहर ही था तो अंदर से आवाजें आ रही हैं जैसे झगड़ा हो रहा है। अब उस दौर में ऐसे घर तो थे ही नहीं जो आज हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसके कान में आवाज पड़ी तो पता चला कि हजरत उस्मान अपनी बीवी से झगड़ रहे थे। किस बात पे? कि जब एक चिराग जलाने से गुजारा हो सकता था तो तुमने दो क्यों जलाए। ये बात सुन के इस शख्स की जुर्रत ही नहीं हुई कि उनसे कुछ मांगे। कहने लगा नाउज़ बिल्ला, जो शख्स इतना कंजूस है कि अपनी बीवी को एक फालतू बल्ब जलाने पे नाराज हो रहा है, वो मुझे क्या देगा। बगैर मांगे वापस चले गए नबी सल्लम के पास। क्या हुआ, मांगा? नहीं, बस वो मैंने नहीं मांगा, मुझे लगता है मुझे नहीं मिलेगा। कहा नहीं, तुम जाओ मांग के देखो। अब दोबारा ये शख्स आए, दरवाजा नॉक किया, हजरत उस्मान बाहर आए। कहा इस तरह जरूरत है और अल्लाह के नबी ने भेजा और मुझे कुछ मदद चाहिए। मांगने वाले भी कोई प्रोफेशनल नहीं होते थे, किसी हकीकी जरूरत को जाते होंगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें जरूरत है, ठहरो मैं आता हूँ। अंदर गए, अशरफियों की थैली, गोल्ड कॉइन्स, पूरी थैली लाके इनके हाथ में दी। अब तो ये बंदा रह ही ना सका। कहने लगा मुझे एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी बीवी से सिर्फ एक चिराग जलाने पे झगड़ रहे थे और अभी मैंने मांगा अल्लाह के नाम पे और आपने इतना दे दिया, ये क्या तजाद है? कहेंगे हाँ, इसलिए कि वो जो बल्ब जलता ना वो मेरे हिसाब में पड़ता, मुझे कल उसका हिसाब देना पड़ता, और ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मैं अपने लिए आगे भेज रहा हूँ। ये है सोच, और हमारा हालात शायद इससे बिल्कुल ही अपोजिट है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए।